ओ अयम यह अद्री पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवें बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेय जल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण शिल प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सुयवस दुर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद शरीर सजाने के रत्न बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम भगवान के नजरों में पूजनीय उन्होंने गोवर्धन को माना और रामायण के कुछ पूजनीय पात्र उनमें से हैं श्री भरत राम दुलारे भरत। तो हमारे पिछले सिटिंग में हमने ये तीसरी शिक्षा ली जहाँ भरत जो है वो कैकेयी को सुधार रहे हैं, अपने स्वयं की माँ को, जिन्होंने उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं कि कितना बड़ा अपराध किया है। एक ऐसा निर्णय जो कि बदकिस्मती में लिया, जो कि कुसंगति में लिया गया और उसका परिणाम बहुत समय तक और बहुत दूर दूर तक उसका हुआ। तो भरत ने कैकेयी से अपनी स्वयं की माँ से कहा कि जो योजना कुयोजना तुमने मेरे लिए और राम के लिए रचाई है, वो मैं कदापि पूरी होने न दूंगा। करेक्टिंग विदाउट पनिशिंग, स्कोल्डिंग विदाउट शाउटिंग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हम साधकों के लिए। जब हम एक ऐसे समुदाय में जी रहे हैं जहां हम हमारे अनर्थों के साथ आए हैं और अनर्थों का निवारण करने के लिए, और वो भी इस कलयुग में जो सबसे ऊंचा सिद्धांत है प्रेम पुमार्थो महान, उसे प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो बहुत सी हमसे गलतियां होंगी, हुई हैं, और जिनके साथ हम ये भक्ति का मार्ग अपनाए हुए हैं उनसे गलतियां होंगी, उनसे गलतियां हुई हैं। तो कैसे इसे बैलेंस किया जाए, और वो भी जब हम एक संस्था के सदस्य हैं, संस्था के द्वारा संस्था में हमारी साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं। तो एक तरफ है न्याय और इस संसार में एक तरफ है बदला। तो न्याय जो है वो समाज में शांति प्रस्थापित करने के लिए है, परंतु अक्सर जब कोई कानून को अपने हाथ में ले लेता है और स्वयं कानून बन जाता है, हालांकि वो है बदला परंतु उसे वो कानून का नाम दे देते हैं, तब फिर हम देखते हैं कि इस मनुष्य समाज में जो सुव्यवस्था होनी चाहिए वो अव्यवस्था हो जाती है। तो हमने हमारे पिछले सिटिंग में ये मुद्दा प्रारंभ किया था, बैलेंसिंग जस्टिस एंड फॉरगिवनेस, न्याय और क्षमा। तो यदि हम ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं उनको अलग अलग कर समझें, तो पिछली बार हमने ये चर्चा करी कि क्षमा का जो गुण है वो ब्राह्मणों का गुण बताया गया है और न्याय प्रस्थापित क्षत्रिय करते हैं, तो उसके लिए शास्त्र और शस्त्र इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम शास्त्र और शस्त्र इन दोनों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और जैसे हमने कहा कि एक संस्था में भक्तों के समुदाय में कैसे न्याय को प्रस्थापित किया जाए, और क्योंकि हम भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं या जो भक्त बनने की चेष्टा कर रहे हैं उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो क्षमाशील कैसे हुए साथ साथ, न्याय भी हो और क्षमाशील भी हो हम। तो क्षमा जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर है और न्याय जो है वो सामाजिक स्तर पर या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर है। तो आज हम ये एक बहुत ही जो पॉपुलर विषय है, न केवल ये बहुत पॉपुलर, न केवल ये बहुत प्रसिद्ध, बल्कि बहुत रेलेवेंट, बहुत आवश्यक विषय है, द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। क्योंकि अधिकांश हम देखे मनुष्य समाज में जब किसी के साथ धोखा होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो अन्याय और धोखा ये बहुत पॉपुलर थीम्स हैं आजकल, यहां तक कि मनोरंजन के भी ये बहुत पॉपुलर थीम्स हैं। और ये पॉपुलर क्यों बनते हैं, क्योंकि इनके विपरीत बदला, प्रतिशोध, प्रतिकार। तो हम लोग अब उस प्रकार का जीवन, उस प्रकार की मनोधारणा लिए हुए हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, इस्कॉन में आए, संस्था से जुड़े डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो प्रश्न है तो हम किसके लिए जी रहे हैं? क्या हम अन्याय के लिए जी रहे हैं, क्या हम न्याय के लिए जी रहे हैं? अन्याय के लिए जिया जाए या न्याय के लिए जिया जाए? न तो अन्याय के लिए न न्याय के लिए हम भगवत आश्रय के लिए जी रहे हैं, जो कि अन्याय और न्याय से परे है, वो है भगवत आश्रय। और जो जरूरी है, जो आवश्यक है भगवत आश्रय के लिए, हम उसका आश्रय लेते हैं। तो आज हमारे इस चर्चा के कुछ मुख्य विषय इस प्रकार से होंगे। बहुत कुछ इस विषय पर बोला जा सकता है, परंतु हमने इसे संक्षिप्त रखा है ताकि हम आज के इस सत्र के पश्चात कुछ मुख्य मुद्दे याद रखकर ले जाएं अपने साथ, ताकि हम हमारे भक्तों के आदान प्रदान में, हमारे परिवारों में, संबंधों में, रिश्तों में, नातों में, हम इन मुद्दों को कैसे उतारें। तो सबसे पहला विषय हमारा होगा क्षमा क्या नहीं है, फॉरगिवनेस व्हाट इट इज नॉट। चार कारण या चार फायदे क्षमाशील होने के, और फिर अंत में क्षमा वास्तविक रूप में है क्या। तो यदि ये पहला मुद्दा हम लें, फॉरगिवनेस व्हाट इट इज नॉट, तो तीन चीजें हैं। फॉरगिवनेस फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट ट्रस्टिंग, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉरगेटिंग। कई बार लोग बोलते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, वो संभव नहीं है। फॉरगिवनेस इज नॉट ट्रस्टिंग, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉरगेटिंग, फॉरगिवनेस इज नॉट कंडोनिंग। कंडोनिंग का अर्थ है कि अक्सर हम जब किसी ने कुछ अपराध किया है या कोई जुर्म किया है तो हम उसे डाउन प्ले कर देते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, या उसे ढक देना, उस जुर्म को, उस अपराध को ढक देना, कवर अप कर देना, या समर्थन कर देना उसका, उसको बोलते हैं कंडोनिंग। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अरे गांधी जी का सिद्धांत अपनाना चाहिए कि यदि एक गाल पर थप्पड़ तमाचा पड़ा है तो दूसरा गाल सामने कर दो, क्षमा कर दो। सामने वाला व्यक्ति तमाचे पे तमाचे मारता जा रहा है, आप एक गाल से दूसरे गाल, दूसरे गाल से फिर से पहला गाल दिखाते रहो, दिखाते रहो। गांधी जी के तीन बंदर, एक अंधा, एक बधिर और एक मूक। ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट, ये तीन गांधी जी के बंदर। तो स्वर्ग में गांधी जी ने पूछा कि मेरे तीन बंदरों का हाल क्या है। 2019 में मेरे तीन बंदरों का हाल क्या है? तो गांधी जी को बताया गया कि जो पहला बंदर आपका अंधा, जिसने आंख पर पट्टी बांधी हुई, तो आपका जो अंधा बंदर है वो कानून व्यवस्था संभाल रहा है। द ब्लाइंड मंकी हैज टेकन ओवर द जुडिशरी ऑफ द कंट्री। और जो बधिर, जो बहरा बंदर है, वो सरकार चला रही है कि उनको जो भी बोलते जाओ, जिसको कहते हैं ना फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, तो वो लोग बधिर बन गए। तो मूक म्यूट कौन बन गया है? जनता, जनता जो है वो साइलेंट है, इसलिए उंगली उठाने की जरूरत है, खास तौर पर कल उंगली उठाने की जरूरत है। इसलिए मैं सोच रहा था श्रील प्रभुपाद ने भी हमें जो फीडबैक दिया इस्कॉन में उसमें ये उंगली बाहर रहती है। इसका मतलब क्या है, बाकी उंगलियों से बी स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब्ड, विद दिस फिंगर बी पॉलिटिकली अलर्ट एंड सोशली एक्टिव। तो यूज करना इस उंगली को, इसलिए फीडबैक से बाहर है इसी उंगली, बाकी की उंगली मत छोड़ना, वो चैंटिंग वाली। तो एक एक कर यदि हम इस पर चर्चा करें, सबसे पहले कोई यदि पूछे कि यदि आपने किसी को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, तो मतलब आपको उस पर कुछ विश्वास था इसलिए तो आपने माफ किया होगा? नहीं, फॉरगिविंग डजंट ऑलवेज मीन्स ट्रस्टिंग। यस, कई ऐसे सिचुएशंस होंगे जब, वो भी हम उसकी चर्चा करेंगे, जब आप क्षमा करने के पश्चात जो ऑफेंडर है, परपेट्रेटर है, उसके ऊपर आप विश्वास भी रख सकते हो फ्यूचर के लिए। फॉरगिवनेस इज फॉर द पास्ट, वेयर एज ट्रस्ट इज फॉर द फ्यूचर। जो कुछ हमारे साथ हुआ उसे ही तो क्षमा करेंगे हम, ऐसा थोड़ी कि एडवांस में क्षमा करके बैठे रहेंगे। तो इसलिए क्षमा, ये जो गुण है ये अतीत को दर्शाता है, हमारे अतीत में हमारे साथ क्या हुआ। और विश्वास वो हमारे भविष्य को दर्शाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में, जब प्रभुपाद अमेरिका में उन्होंने इस्कॉन शुरू ही किया था, तो ये घटना हुई थी। तो एक बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, अच्छे पोस्ट पर, वो प्रभुपाद से प्रभावित हुए अमेरिका में, अमेरिकन, प्रभुपाद उनको मंदिर बुलाए और प्रभुपाद अपने हाथों से इस अतिथि के लिए प्रसाद बना रहे थे और अपने सर्वेंट को कहा था कि किसी को भी आने मत देना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं उस अतिथि के लिए प्रसाद बना रहा हूँ। हुआ क्या, सर्वेंट को बोल दिया, सर्वेंट ने बिना सोचे समझे ब्लाइंडली इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहा, अतिथि खुद आ गए जल्दी, सर्वेंट को पता नहीं इन्हीं के लिए प्रभुपाद कुकिंग कर रहे हैं, और कह दिया डिस्टर्ब मत करो, प्रभुपाद किसी से नहीं मिलने वाले आज, जाओ। चले गए, प्रभुपाद कुकिंग कर ऑफरिंग कर रेडी हैं। तो प्रभुपाद ने उस सर्वेंट को आगे चलकर फॉरगिव किया, बट प्रभुपाद फॉर अ लॉन्ग टाइम डिडंट ट्रस्ट हिम, कि आप दूसरी सेवा करो। तो बहुत बार क्या होता है कि आप किसी को उस समय, ठीक है, मन में बहुत क्रोध आ जाता है उस व्यक्ति के प्रति, और वो व्यक्ति भी सामने से वो पश्चाताप कर रहा है, तो और ज्यादा थोड़ा हृदय पिघल जाता है। जब सामने से कोई पश्चाताप कर रहा है, गलती अपनी मान रहा है, माफी मांग रहा है, तो उसमें क्या दिखता है कि बहुत बार जो डिफॉल्टर हैं उनके नियत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। दे मे नॉट हैव इल इंटेंशंस बट दे डू नॉट हैव द डिटर्मिनेशन टू चेंज। देयर इंटेंशंस माइट बी प्योर बट देयर डिटर्मिनेशन इज वीक। तो इसलिए फॉरगिवनेस is given, whereas trust has to be earned. अब यहां पर ये दो चीजें बहुत जरूरी है कि जो दो पार्टी है, एक द रिसीविंग एंड ऑफ फॉरगिवनेस एंड द पर्सन हु इज फॉरगिविंग, तो दोनों का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट है यहां पर, यदि उस संबंध को फिर से रिपेयर करना है. तो ये व्यक्ति जो कि विक्टिम है किसी ऑफेंस का, उसके अंदर क्षमाशीलता होनी चाहिए, विच इज टू गिव, और सामने वाला व्यक्ति जिससे गलती हुई है उसके अंदर इतनी काबिलियत अगर नहीं है तो पैदा करे ताकि वो फ्यूचर में उस व्यक्ति का ट्रस्ट, विश्वास वो जीत सके. तो यदि हम दो उदाहरण लें शास्त्रों से, एक है फॉरगिविंग बट नॉट ट्रस्टिंग और एक है फॉरगिविंग एंड ट्रस्टिंग. तो इसमें पहले श्रेणी में उदाहरण कंस का है. कंस अगर उसके पर्सनालिटी को हम एनालाइज करें, उसके साइकोफिजिकल नेचर को हम एनालाइज करें, तो कंस वो बहुत जिसको कहेंगे गलिबल या इन्फ्लुएंस हो जाता था वो. तो जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी, उससे पहले कंस क्या कर रहा था, ऐसा प्रेम प्रदर्शित कर रहा था कि साधारणतः कोई भी राजा या राजकुमार इस प्रकार से पब्लिकली ड्राइवर बना हुआ है, अपने स्वयं की बहन की शादी में वो ड्राइवर बना हुआ, तो अति प्रेम दिखा रहा था. और फिर जैसे ही आकाशवाणी सुनी, तलवार निकाल ली, उसी समय जिसके प्रति इतना प्रेम, हाथ में वो लगाम लिए हुए रथ के, सब छोड़कर तलवार ले ली उसी समय खत्म करने के लिए. तो अब देखो, जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, जो इतना इंपल्सिव होता है, जिसको कहते हैं कैन हैव मूड स्विंग्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, कुछ सोचा नहीं. अब ठीक है, आकाशवाणी हुई तो कम से कम अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर कुछ विचार विमर्श कर सकता था वो, या खुद ही थोड़ा सोच सकता था कि ये आकाशवाणी हुई है, सबसे पहले तो बोला किसने, सही में आकाशवाणी हुई है या ऐसे कोई माइक्रोफोन पे चिल्ला के बोला है कहीं से. तुरंत तलवार निकाल. तो वसुदेव जी ने उधर शांत किया, उस इमरजेंसी सिचुएशन को वसुदेव जी ने हैंडल किया, बहुत बखूबी हैंडल किया, अलग अलग तरीके से, साम दाम दंड भेद, फिलोसॉफिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, वसुदेव जी ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, कंस मान गया, ठीक है ठीक, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. फिर वो जो उदाहरण है कमल, और कंस को बोला गया, अरे मूर्ख, आठवां पुत्र, वो जब आकाशवाणी होती है तो आठवीं का, आठवां का जो गिनती है कोई भी हो सकता है, फिर से मन उसका ये हो, मार डालूंगा, बंद कर दो इनको. और फिर एक एक कर आकर वो उसने छह शिशुओं की हत्या नृशंस रूप से कर दी, देवकी और वसुदेव जी की. अब सोचिए कि यदि हम देवकी और वसुदेव की जगह पर होते तो क्या हम कंस को क्षमा करते जो कंस ने किया. परंतु वसुदेव और देवकी अंततः उन्होंने कंस को क्षमा किया, बट दे नेवर ट्रस्टेड कंस. जब दुर्गा देवी, कंस को पता चला कि अरे ये तो आठवां पुत्र नहीं, पुत्री, और वो भी दुर्गा देवी, तो कंस और कंफ्यूज होने लगा और वो बोलता है वसुदेव जी को कि आज मुझे समझ में आया कि कलयुग अपने समय से पहले आ चुका है। ये देवता ये भी झूठ बोलने लगे, बोला था पुत्र होगा और यहां पर पुत्री हो ही है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा षड्यंत्र, बहुत हम लोगों के साथ बुरा किया देवताओं ने। क्या बोल रहा है कंस? हम लोगों के साथ बुरा किया, अब हम हो गए। तो अब सुनने में कैसे लगता है कि ठीक है, हो सकता है वसुदेव जी कंस की ऐसी बातें सुनकर, और कंस फिर फिलॉसफी भी बोलता है उसमें। कंस बोलता है कि देखो जो 6 शिशु मारे गए, जो 6 पुत्र मारे गए, एक दृष्टिकोण से अब उसे तुम लोगों का कर्म ही मान लो, कि तुम लोगों के कर्म में था कि वो 6 पुत्र तुम्हारे मारे जाने वाले थे, मैं तो केवल सूत्रधार बना, मैं तो इंस्ट्रूमेंट था, तो बुरा मत मान। ये सारे जो सच्चाइयां हैं इस संसार की वो देखने को मिल रही, देवता भी झूठ बोलते हैं, कर्म का नियम जो कि अटल है, कोई उसको टाल नहीं सकता, इस प्रकार से उसको फिलोसोफाइज कर रहा है। तो अब देखिए, और कोई होता तो बोलता कि ठीक है कंस सुधर गया है, तो अब सच्चाई बता देते कि 8वां पुत्र ही था और ट्रांसफर हो गए। नहीं, वसुदेव जी वहां पर वो बह नहीं गए कंस के उस तथाकथित सदाचार से, और ऐसा भी नहीं था, कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि वसुदेव जी और देवकी वो लोग प्लान कर रहे हैं जेल के अंदर बदला लेने के लिए। दे वर नॉट प्लानिंग फॉर रिवेंज एंड साइमल्टेनियसली दे डिडंट ट्रस्ट कंस, बट दे फॉरगेव, माफी दे दी कंस। तो ये उदाहरण है जहां पर फॉरगिवनेस वॉज देयर बट देयर वॉज नो ट्रस्ट। फिर दूसरा उदाहरण रामायण का है जहां पर सुग्रीव वादा कर भूल गया, और यहां जब राम और लक्ष्मण, यहां तक कि रामचंद्र जी भी क्रोधित हुए, लक्ष्मण तो क्रोधित हुए ही, लक्ष्मण तो कहे उसको तो मैं अभी खत्म कर देता हूं, उसकी तो जरूरत ही नहीं हमको, ऐसा दगाबाज, उसके लिए क्या क्या हमने नहीं किया, नहीं। लेकिन रामचंद्र जी बोला कि नहीं, उसको खत्म नहीं करना, उसको सुधारना है। तो सुग्रीव ने इस प्रकार का एक प्रकार का दगाई कहेंगे उसे, लेकिन रामचंद्र जी ने उसको किस प्रकार से लिया कि चलो भूल गया, गलती हुई इससे, भूल गया। उन्होंने उसको कोई षड्यंत्र रूपी दगाबाजी के रूप में नहीं देखा। यदि देखे होते तो फिर सुग्रीव के ऊपर ट्रस्ट नहीं किए होते, और जब सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सुग्रीव ने पूरी वानर सेना को मोबिलाइज किया, और फिर जो जो एक्सपर्टीज से सुग्रीव सारे वानर सेना को कहां कहां जाना है, पूरे जो वन राज्य है वो वन राज्य का पूरा ज्योग्राफी सुग्रीव जानते थे, तो वो राम और लक्ष्मण, वो जो कैपेबिलिटी थी सुग्रीव की, वो कैपेबिलिटी तभी समझ में आई उनको। देखो इसमें दो चीज है, एक है किसी की नियत और है किसी की काबिलियत। अब किसी की नियत बहुत अच्छी होगी परंतु यदि काबिलियत नहीं है तो भी हमें संभल कर रहना पड़ता है। जैसे मान लो आपको हेयर कट लेना है, कोई नाई की दुकान खुली नहीं है, तो आप घर के किसी सदस्य को कहते हो जिसको बाल काटना बिल्कुल भी नहीं आता, उस तरह चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो उसको यदि आप वो रेजर दे दो शेविंग के लिए, या फिर उस तरह दे दो, या फिर कैंची दे दो बाल काटने के लिए, तो वो जो आपके घर का परिवार का सदस्य, उसकी नियत बहुत अच्छी होगी होपफुली, बट यू विल नॉट ट्रस्ट द कैपेसिटी द केपेबिलिटी, काबिलियत पर आपको शक हो। और नाई जो है उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। और कई बार हम सब ने अनुभव किया, नाई के चेयर पर जाकर जब कोई बैठ जाता है तो ऐसे बैठता है जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, अब जो करना है करो मेरे साथ, आंखें बंद कर कर वो नाई जो है वो कहां कहां यहां हाथ चला रहा है, गाल को मसल रहा है, कहीं यहां मालिश कर रहा है, टोटली उसके ऊपर छोड़ देते हैं भाई। परंतु यदि पता चले कि ये नाई, इसने इसके ट्रैक रिकॉर्ड में करीब 10 लोगों का गला काटा है उस तरह से, तो उसके अंदर काबिलियत होगी परंतु नियत पर शक हो गया। तो ये जो दो मुद्दे हैं, किसी की नियत और किसी की काबिलियत। तो बहुत बार होता क्या है कि हाँ, कई भक्त गलती करते हैं, गलती पे गलती करते हैं, और उनकी नियत वो नहीं होगी कि उनको जानबूझ के वो गलती करनी है, जानबूझ के की जाए उसको गलती भी नहीं बोलते, वो अपराध हो जाता है। तो उनको हम क्षमा कर सकते हैं और बार बार क्षमा कर सकते हैं, जैसे वो जीसस क्राइस्ट को पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स वन शुड फॉरगिव, 7 × 70 times, विच मीन्स बेसिकली अनलिमिटेड टाइम्स कीप्स फॉरगिविंग फॉरगिविंग। But how many times can you trust? That is a very important question. तो इसलिए ये जो पहला मुद्दा है, forgiving is not trusting. फिर दूसरा मुद्दा है, forgiving is not forgetting. तो बहुत बार ये जो बोला जाता है, forgive and forget. ये जो forgive and forget जो बोला जाता है, ये लिटरल सेंस में कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कभी डिलीट बटन के साथ नहीं आया है, इनफैक्ट एंटर बटन के साथ है वो। अवर ब्रेन डजंट कम विद द डिलीट बटन, इंप्रेशंस उस पर चढ़ते जाते चढ़ते जाते चढ़ते जाते। इसलिए Forgetting someone's wrongdoings is neither possible nor safe. ये possible भी नहीं है। किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, कोई भी चीज को भूलना हम प्रैक्टिस कर किसी चीज को भूल नहीं सकते, प्रैक्टिस कर किसी चीज को याद कर सकते हैं। कभी आपने इस पर गौर किया है? प्रैक्टिस कर किसी चीज को मैं भूलूंगा, क्या भूलूंगा? मैं जो अय्याशी का जीवन जिया, मैं जो आलसीपना इतना मेरे अंदर, जो भी अनर्थ है 10-10 घंटे सोने का, मैं उसको भूलने की बोलूंगा, अभी बैठ के मैं 2 घंटे याद कर भूलूंगा। कैसा लगता है ये सुनने में? उसको याद कर भूलूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, कोई ये प्रश्न पूछे, हाउ डू यू से इट्स नॉट सेफ? क्योंकि यदि तुम भूल गए तो होगा क्या कि यू विल नॉट बी कॉशियस। जैसे मान लो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और कुछ खाया और आपका पेट खराब हुआ, फूड पॉइजनिंग हो गया, और आप भूल गए, इतना सब कुछ हुआ, ऑलमोस्ट आप हॉस्पिटलाइज थे, जान कैसे तो बच गई और इसको आप भूल गए। सो यू विल नॉट बी कॉशियस, आप सावधान नहीं रहोगे, परंतु यदि उसे याद रखोगे तो सेफ, सेफ्टी आपके लिए क्या है उसको याद रखने के लिए, कि फ्यूचर आइंदा आप हर समय केयरफुल रहोगे, जो आपने खाया, जहां आपने खाया, उसके लिए केयरफुल रहोगे। तो अभी देखो, इसमें दो एक्सट्रीम है, एक है कि उसके उसको इतना पकड़ कर रखो, इतना याद रखो, सब जगह लिख कर रखो कि यहां पर मुझे ऐसे किया, इसने मुझे ऐसे किया, सब जगह उसको याद दिलाते रहो अपने आप को, वो एक एक्सट्रीम है। और एक एक्सट्रीम है कि चलो उसको पूरा भूल जाते हैं, जो कि पॉसिबल भी नहीं है और जो कि सेफ भी नहीं है। अब इसकी तुलना, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो इसकी तुलना यदि हम घाव से करें, जब हम घायल हो जाते हैं और उस घाव को हमें अब भरना है, तो अलग अलग तरीके से समय बीतता है, बोलते हैं ना टाइम हील्स वूंड्स, तो कई ऐसे घाव होते हैं कि वो भर जाते हैं परंतु निशान, उसका जो स्कार है वो रहता है। तो जो स्कार है वो क्या है, वो उसकी स्मृति है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया था। अब इसे देखिए, गलत मत समझिएगा, कई बार क्या होता है कि हम उसको इतना कसकर पकड़ कर रखते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा किसी ने किया, 10 साल पहले किया, 20 साल पहले किया, उसे अभी तक कसकर पकड़े हुए हैं। तो ये कैसा है, उसको हमने क्षमा नहीं किया और कसकर पकड़े हुए, होल्डिंग ऑन टू दैट ऑफेंस और दैट मिस्टेक, इज नॉट लेटिंग द वूंड टू हील। तो उसमें क्या है कि वो घाव भरेगा भी नहीं। जैसे मान लो कि कोई घाव हो गया हमारे शरीर में और उसको बार बार हम कुरेद रहे, तो उसको बार बार कुरेदने का मतलब क्या है कि तूने मेरे साथ 20 साल पहले किया, अभी तक उसको कुरेद रहे, उसको भरने ही नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि मुझे इसको भूलना नहीं है। तो उसमें हो क्या रहा है, दुखी हम ही हो रहे हैं, वो घाव को भी भरेगा नहीं। इसलिए फॉरगिविंग बट नॉट फॉरगेटिंग इज लाइक अलाउइंग द वूंड टू हील बट लेटिंग द स्कार टू रिमाइंड यू कि उससे सावधान रहना, क्योंकि फिर से कभी भी वो घाव दे सकता है। ये सुनने में थोड़ा हैवी लगेगा आपको, बट थोड़ा जो अनुभव हुआ है संसार में रहते हुए, अपने अनुभव से बता रहे हैं। सो देयरफॉर स्कार्स आर दोज रिमाइंडर्स विच सेफगार्ड अस फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। विच ऑफेंडर्स? हैबिचुअल ऑफेंडर्स, कि जिनकी आदत बन गई कि वो वही घाव और उसी प्रकार का प्रहार वो करते रहते हैं, बार बार। तो एक इंटरेस्टिंग ये इमेज मिला मुझे कि यदि हम ये दोनों शब्दों को लें, फॉरगिव और फॉरगेट, और हाईलाइट करें गिव टू टेक, तो हाँ हमें कुछ देना है और कुछ देने से फिर कुछ प्राप्त होता है। जैसे बोलते हैं ना, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। तो उसका प्रपोर्शन, किस प्रपोर्शन में आपको वो घाव को याद रखना है और किस प्रपोर्शन में आपको उस घाव कि परे जाना है, टू मूव ऑन। फिर ये जो तीसरा मुद्दा हमने लिया, फॉरगिविंग इज नॉट कंडोनिंग। तो कंडोनिंग, जिसका हमने लिटरल ट्रांसलेशन आपको दिया था कि उसको डाउन प्ले कर देना, ये कह देना कि अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, अगर शायद वो बहुत बड़ी बात थी जिसको बहुत से या ऐसे एलिमेंट्स की वजह से समाज में उथल पुथल मच सकती है और उसको हम डाउन प्ले कर दें, उसका समर्थन कर दें या उसको ढक दें, तो क्या कर रहे हैं, वी आर जस्टिफाइंग रॉन्ग डूइंग इन द नेम ऑफ फॉरगिवनेस। कंडोनिंग इज एज गुड एज टीमिंग अप विद द रॉन्ग डूअर इन एन इनडायरेक्ट वे। वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडोनिंग इज द कॉन्फिडेंस गिवन टू द ऑफेंडर फॉर कमिटिंग फ्यूचर ऑफेंसेस। कि जो अपराधी है उसको जब ये समझ में आता है कि अरे कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये तो बोल रहे हैं कि अरे ठीक है इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, तो फिर चलो करते रहते हम। तो प्रभुपाद वो स्टोरी सुनाते थे कि एक चोर जब पहली दफा वो पकड़ा गया और उसे बहुत बड़ा कारावास मिलने वाला था, तो उसने अपनी माँ को बुलाया कोर्ट में और अपने माँ का कान काट लिया अपने दांतों से। क्यों? क्योंकि जब पहली दफा मैंने बचपन में चोरी करी थी तो मुझे रोका नहीं, केवल इतना ही नहीं बल्कि मेरा राजा बेटा है, मेरा लाडला बेटा है, थोड़ा शरारती है, ऐसे कहकर कंडोन किया, उसे ढक दिया उसे। तो प्रभुपाद ये स्टोरी सुनाते हैं कि हाउ कंडोनिंग इज अनदर वे ऑफ टीमिंग अप विद दैट ऑफेंस। अब इसके पश्चात ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फिर फॉरगिवनेस का पालन क्यों करना चाहिए, हमारे अंदर हमें क्षमाशीलता क्यों लानी चाहिए, वाई टू फॉरगिव। सबसे पहला रीजन, फॉरगिविंग हेल्प्स फॉरगिवर द मोस्ट। बाकी जिसको आपने क्षमा किया उसका भला होगा या न होगा ये भगवान जाने और वो व्यक्ति जाने, परंतु सबसे पहले और सबसे ज्यादा भला किसका होगा, हमारा होगा या उसका होगा जिसके अंदर उसने क्षमाशीलता पालन करी। दूसरा फायदा या दूसरा कारण, फॉरगिव टू बी फॉरगिवन बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। यदि आज हम किसी को क्षमा करेंगे तो ध्यान में रखना कि भविष्य में वो बंदा हमें हमारे काम आने वाला है हमें क्षमा करने के लिए, क्योंकि हम भी कोई आसमान से नहीं टपके, हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, नो वन इज परफेक्ट। फॉरगिविंग हेल्प्स अस टू मूव फॉरवर्ड। और चौथा कारण, फॉरगिविंग इजीज अस टू टॉलरेट अवर पास्ट लाइफ कार्मिक रिएक्शन। हमारे सुधार के लिए बहुत से लोगों को प्रकृति अरेंज कर भेजती है और खास तौर पर हमारे बहुत निकट वो लोग रहते हैं। और उनको हमने ही हमारे पिछले कर्मों के द्वारा अपॉइंट किया, ये समझ लेना। तो यदि इसमें पहला मुद्दा हम लें, फॉरगिविंग हेल्प्स फॉरगिवर द मोस्ट, तो नॉन फॉरगिविंग मेंटालिटी, मान लो कि कोई इस प्रकार के नेचर का है, स्वभाव का है कि मेरे साथ यदि किसी ने बुरा किया तो मैं, बोलते ना, आई विल पे बैक इन द सेम कॉइन। मेरे अंदर ये सब क्षमा कर देना, माफ कर देना, मैं उस टाइप का नहीं हूं। ईंट का जवाब मैं दो ईंट से दूंगा, नहीं तो पत्थर से, नहीं तो पूरा पहाड़ फेंकूंगा। हम ऐसे ही हैं। तो उसमें ये दो चीजें होती हैं, रिसेंटफुल एंड रिवेंजफुल। जैसे एक एंगर मैनेजमेंट सेमिनार हमने अटेंड किया था पहले इस्कॉन में आने से पहले, तो उसके अंदर जो फैसिलिटेटर था उसने फॉर्मूला दिया कि आप अपने एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो बहुत विचित्र प्रकार का नुस्खा था उसका। उसने कहा कि आप जिससे भी गुस्सा हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो पति हो, चाहे आपका बच्चा हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, जिससे भी आपको गुस्सा है, तो उसने एक कमरे में पंचिंग बैग लटकाया हुआ था, ये जो बॉक्सर्स प्रैक्टिस करते हैं ना पंचिंग बैग के ऊपर, तो वो रेती की बोरी वो पंचिंग बैग को लगाया हुआ था, और फिर सबको भेजा इमेजिन करो कि ये है तुम्हारा बॉस या ये है तुम्हारा पति, पीटो लात घुसे मारो इसको, सारा गुस्सा उड़ेल दो इसके ऊपर। जैसे मैं बता रहा था ना कि मेरा कलीग वो हमारे बॉस को वो जो कांटा होता है खाने वाला जिससे लोग नूडल्स वगैरह खाते हैं फोर्क, उसे देखा करता था। मैंने पूछा क्यों ऐसे देखते हो, बोला दिल को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ये जेल के अंदर बंद है। एक भक्त उन्होंने मुझे कहा कॉन्फिडेंशियली कि जब उनको किसी के ऊपर क्रोध आता है, डिवोटी के ऊपर, दूसरे डिवोटी के ऊपर क्रोध आता है, कई बार होता क्या है कि जो बाहर वाले होते हैं उनके ऊपर हमको तरस आता है, और ज्यादातर दूसरे डिवोटी के ऊपर क्रोध आता है। तो ये कहे कि जब भी मुझे किसी के ऊपर बहुत क्रोध आता है तो मैं क्या करता हूं, मेरा लैपटॉप खोलता हूं, मेरे ईमेल अकाउंट में जाता हूं, और जो जो मेरे मन में चल रहा है उसके प्रति टाइप करता हूं, मैं पूरा लंबा ईमेल टाइप करता हूं, लेकिन मैं सेंड नहीं करता। तो जैसे ही मैं टाइप करता हूं पूरा ईमेल, सारी जितनी भी भड़ास है सारी भड़ास उतार देता हूं, जितनी गालियां वगैरह सब देना है, उसके बाद में उसको ट्रैश में डाल देता हूं वो ईमेल। तो कई लोग ये भी तरीका अपनाते हैं। अब यहां पर ये जो दो मुद्दे हैं कि नॉन फॉरगिविंग अगर ये स्वभाव हमारा है, तो ये जो दो चीजें होती हैं, एक एक्सट्रीम क्या है, रिसेंटफुल। रिसेंटफुल मतलब उसको इतना सोचते न रंज रंज करना, जिसको बोलते हैं ना, उसके ऊपर रंज करते रहना करते रहना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा यू ना, उस व्यक्ति ने किया तो कैसा किया मेरे साथ, तो उसको इतना पकड़कर रंज करते रहना, उसको बोलते हैं बीइंग रिसेंटफुल। तो बीइंग रिसेंटफुल वो किस प्रकार से है, आप लोग जो ड्राइविंग जानते हैं, इफ यू पुट योर हैंड ब्रेक ऑन, खींचे हुए पूरा हैंड ब्रेक को और एक्सीलेटर को भी दबा रहे, तो वो जो जीवन जो जी रहा है कि उसको पकड़े हुए है कि उसने किया तो कैसा किया मेरे साथ, ऐसा उसकी जरूरत कैसे हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी औकात है क्या, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, यू आर ट्राइंग टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट रियलिटी। वो जो भी उसने किया, वो जो भी जैसा है, वो रियलिटी है, वो असलियत है, उसकी असलियत है, इस संसार की असलियत है। सो फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट रियलिटी यू विल ऑलवेज लूज, रियलिटी ऑलवेज विंस। अच्छा, दूसरा ये जो रिवेंजफुल, अब जो ये इस टाइप के जो होते हैं, जो रंज करते रहते हैं, उनके अंदर बदला लेने की हिम्मत नहीं होती। वो उसके सामने जाके कुछ नहीं बोलेंगे, अकेले में यहां वहां क्रॉकरी तोड़ देंगे, चीजें फेंकेंगे, लेकिन सामने जाके उससे बदला लेने की या बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये जो दूसरे कैटेगरी के हैं, ये क्रॉकरी फोड़ते हैं उसके ऊपर। ये कौन सा है? रिवेंजफुल, सीधा बदला लेंगे। और अलग अलग तरीके से, जैसे हमने कहा कि बहुत ये सिनेमा के बहुत पॉपुलर थीम्स होते हैं, कैसे बदला लिया। और कई होते हैं कि बहुत सिविलाइज तरीके से बदला लेते हैं, कई होते हैं बहुत अनसिविलाइज तरीके से बदला लेते हैं। जैसे एक पत्नी, वो LIC की एम्प्लॉय थी, इंश्योरेंस कंपनी है ना LIC, उसकी एम्प्लॉय थी। तो उसे कुछ जानलेवा बीमारी हुई, तो उसका जो पति, वो ऑलरेडी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दिया था उसे, कि ये तो अभी इसका तो इंश्योरेंस जा रहा है, तो ये अभी जब पत्नी मरने वाली है तो इसने अपना एक पोर्ट्रेट बनवाया, पेंटर को बुलाया, पोर्ट्रेट बनवाया। तो पेंटर ने पोर्ट्रेट बनाया, अच्छा खासा पोर्ट्रेट बनाया। पेंटर को कहा कि ये गले में 9 लखा हार पेंट करो, मोतियों नहीं, इसका हीरों का हार। तो उसने कर दिया। फिर फाइनली उसने पूछा कि आपके पास है क्या? बोले नहीं, मेरे पास नहीं। तो फिर क्यों आप इसको पेंट करा रहे? बोले ये मेरे मरने के बाद जब मेरी तस्वीर टंगेगी तो जो नई पत्नी आने वाली है वो देखेगी और मेरे पति को पूछेगी हार कहाँ है। तब उसके शादीशुदा जीवन में जो दहशत मचेगी वो कभी उसको कन्विंस नहीं कर पाएगा कि वो हार कभी था ही नहीं। तो इसे कहते हैं जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो ये जो रिवेंजफुल एटीट्यूड क्या है? कोयले को, जलता हुआ कोयला हाथ में लिया है और उस अपराधी को ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर फेंकने के लिए। अभी तक सामने नहीं आया, ढूंढ रहे हैं उसको फेंकने के लिए। तो हो रहा क्या है? अपने स्वयं का हाथ पहले वो जला रहा है। सो बोथ रिजेंटफुल एंड रिवेंजफुल इज अनहेल्दी। दिस इज द, ये दो बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ being non-forgiving. They too are the offsprings of being non-forgiving. Phir, forgive to be forgiven because no one is perfect. Maturity in relationship is to know the difference between who is insensitive and who is desensitized. तो कोई अगर ये प्रश्न पूछे कि जब कोई बार बार आपके साथ दुर्व्यवहार करे, बार बार गलतियां करे, बार बार अपराध करे, तो सबसे पहले ये देखना है कि वो व्यक्ति क्या, उसकी नियत बुरी है, या बहुत बार होता है कि वो व्यक्ति की नियत बुरी नहीं होगी, वो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। इसलिए ये जो मुद्दा है बीइंग इनसेंसिटिव एंड डिसेंसिटाइज्ड, तो ये क्या है कि इनसेंसिटिव लोग कौन होते हैं? टू नॉट केयर फॉर अदर्स इमोशंस, दोज आर द इनसेंसिटिव पीपल। और पीपल हु आर डिसेंसिटाइज्ड, ये एक बायोलॉजिकल लेवल पर है, उनको समझ में ही नहीं आता है। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो क्लीनलीनेस फ्रीक है, हर चीज उसको साफ चाहिए। जहां कहीं पर भी मैं एक डिवोटी को जानता हूं जो अपने साथ दो रुमाल रखते थे, एक अपने खुद के लिए और दूसरी रुमाल जहां पर भी जाएंगे उसको साफ करते रहेंगे। अब जैसे यहां पर बैठे हैं, वो अगर क्लास के लिए बैठे, हमने अपनी आंखों से देखा, क्लास शुरू नहीं करेंगे जब तक ये पूरा डस्ट फ्री नहीं हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्लीनलीनेस फ्रीक। अब ऐसे व्यक्ति अगर वो संग करते हैं या वो रह रहे हैं कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको पता ही नहीं चलता है कि चारों तरफ गंदगी है और उसके वजह से, सो दोज आर डिसेंसिटाइज पीपल। जैसे एक वृद्ध दंपति, वो लोग अकेले अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे, तो जो पति है वो डॉक्टर के पास गया और शिकायत अपनी पत्नी के लेकर, उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है उसको ऊंचा सुनाई देता है, इतनी बार मैं बोलता हूं और उसको समझ में ही नहीं आती बात, और उसको विश्वास ही नहीं कि उसको ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए वो आती नहीं है, मैं आया हूं उसके बदले, तो आप कुछ इलाज बताइए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, ऐसा कीजिए कि 10 फीट की दूरी से मुझे पता चले कि कितना सीरियस प्रॉब्लम है कानों का, तो 10 फीट की दूरी से आप कुछ बोलिए उनको और देखो उनको कितना सुनता है, फिर थोड़ा नज़दीक जाइए, फिर 5 फुट की दूरी से, फिर 2 फुट की दूरी से, 1 फुट की दूरी से कुछ बोल के देखिए, तो कितने इंटेंसिटी में ऊंचा सुनाई देता है उनको मुझे समझ में आया, फिर मैं उस हिसाब से इलाज बताता गया। तो 10 फीट की दूरी पे खड़ा है वो, अपनी पत्नी को कहता है आज खाने में क्या बना है, कोई रिस्पांस नहीं। समझ में आया कि 10 फीट की दूरी से तो कुछ भी सुनाई नहीं देता इसको, तो और नजदीक जाता है 5 फीट की दूरी पे, खाने में क्या बना है, कोई रिस्पांस नहीं। और नजदीक जाता है 2 फीट की दूरी पे, खाने में क्या बना है, कोई रिस्पांस नहीं। जब एकदम नजदीक जाकर चिल्लाकर खाने में क्या बना है, तब फिर फाइनली पत्नी बोलती है अरे मैं 4 बार बोल चुकी हूं आज खिचड़ी बनी है। प्रॉब्लम किसका था, ये पति का था। ऐसा नहीं है, पतियों के ऊपर भी जोक्स होते हैं। तो अब ये जो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिश्ते में ये, और स्पेशली फॉरगिवनेस और यू नो लेटिंग इट गो, इसको ये दोनों चीज समझना। तो मान लो कि कोई क्लीनलीनेस फ्रीक है घर में, उसको सब कुछ साफ सफाई चाहिए, और दूसरा है उसको साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं, बट वेरी गुड इन फाइनेंसेस, कि पैसे ठीक से सारे, उसका बजटिंग होना चाहिए, ये वो। तो होता है ना कई बार हस्बैंड जो हैं वो लोग फाइनेंसेस अच्छा देखते हैं, वाइफ जो हैं वो साफ सफाई, उनको फाइनेंसेस से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब खर्च करने के समय लेना देना होता है, देना ज़्यादा होता है। तो अब ये कॉम्बिनेशन, अब देखो वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है किसी संबंध में, वर्स्ट कॉम्बिनेशन है व्हेन वन पर्सन इज सुपर सेंसिटिव एंड द अदर पर्सन इज टोटली डिसेंसिटाइज्ड अबाउट द सेम थिंग, दैट इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। जैसे हमारी स्कूल की जो इंग्लिश टीचर थी, तो उनका फोकस केवल इंग्लिश ग्रामर, मिसेस जोशी उनका नाम था, तो एक तो इंग्लिश में बात करनी है और कहीं पर भी तुमने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी लिखने में और बोलने में, टूट पड़ती थी। और कई बार हमको लगता था कि क्या इतना वो, मतलब जैसे कि बचपन में हमको सिखाती थी, हर समय जब तुम ग्रामर में कहोगे आई डिंट गो सो इट शुड बी इन द प्रेजेंट, व्हेन यू आर सेइंग आई डिड नॉट इट शुड बी फॉलोड बाय द प्रेजेंट टेंस। अब बहुत बार इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो फंक्शनल तौर पर यूज करते हैं हम लोग, वी मेनी टाइम्स मैसेकर द इंग्लिश ग्रामर, बात समझ में आ जानी चाहिए हाँ? कि शादी में एक बंदा बोल रहा है अरे लेडियों का होने के बाद जेंटों को भी लगा दो, तो बात समझ गई ना सब लोग। अब उसमें जेंटों लेडियों क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो लैंग्वेज के पीछे एकदम बहुत परफेक्शनिस्ट है वो हर समय क्या देखेगा कि ग्रामर बराबर है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक बराबर है कि नहीं। तो उनका ऐसा था, तो इसलिए अभी ये जो कॉम्बिनेशन है जो हमने कहा, वन इज सुपर सेंसिटिव एंड द अदर इज टोटली डिसेंसिटाइज्ड अबाउट द सेम थिंग, तो इसमें यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हाउ? कि यदि कोई बहुत साफ सफाई साफ सफाई साफ सफाई दिन भर साफ सफाई, अरे इतना क्या साफ सफाई, मतलब हम लोग क्या घर के मालिक हैं या नौकर हैं, पोता लेके घूमते रहें घर पे खाली। तो जो क्लीनलीनेस फ्रीक है उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा गंदगी से, उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि यू वैल्यू द पर्सन मोर देन द साफ सफाई, एंड द पर्सन हु इज डिसेंसिटाइज शुड वर्क अपॉन बीइंग सेंसिटिव कि भाई उसको साफ सफाई अच्छी लगती है तो उसके लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए मुझे साफ सफाई करके रखनी चाहिए। तो यहां पर यह मुद्दा कौन सा है कि हाउ दैट मैच्योरिटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट यू ऑल्सो कमिट मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ बीइंग इनसेंसिटिव और डिसेंसिटाइज्ड, आइदर ऑफ द केसेस। द नेक्स्ट इज फॉरगिविंग हेल्प्स वन टू मूव फॉरवर्ड। फॉरगिवनेस मीन्स टू कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल so that we can focus on big things of our life. अब अगर घर में छोटी छोटी चीज को लेकर झगड़े, बड़े बड़े झगड़े होते रहेंगे, जैसे बोलते हैं ना छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े झगड़े हुआ करते हैं, so focus क्या है, वो एक जो छोटी सी चीज हुई है जिसकी भी गलती हुई है, अगर हमको कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है तो वो बड़ा हासिल करने के लिए छोटी चीज को अभी टॉलरेट कर लो या नजरअंदाज कर दो ताकि बड़ी चीज हम हासिल कर सकें। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, अब यहां पर एक मुद्दा क्या है, जैसे हमने इसके पहले जो मुद्दा लिया था एक्सेप्ट द रियलिटी, डोंट फाइट विद द रियलिटी, यू कैन नॉट fight with reality, you accept the reality because reality always wins. Accepting reality doesn't mean approving reality. Accepting someone's mistake doesn't mean approving that mistake. तो यहां पर acceptance of reality जो है ये हमें help करती है ताकि हम कुछ आगे बढ़कर कुछ और हासिल कर सकें और वहां अटके ना रहें। तो एक एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे एक्सेप्टिंग रियलिटी। मान लो आप कार चला रहे हो और आपको कहीं जाना है और आपने गलत टर्न ले लिया। अब गलत टर्न ले लिया, आप समझ गए कि गलत टर्न लिया है और अभी आपको यू टर्न लेना है पूरा। तो एक चीज है यू वॉन्ट एक्सेप्ट द रियालिटी. वहां पर बैठकर, कार में बैठकर आप गाली गलौज कर रहे हैं कि ये गलत टर्न लिया कैसे मैंने. रादर देन दैट, टेक द यू टर्न एंड स्टार्ट ड्राइविंग बैक. यू विल सेव टाइम एंड यू विल बी इन द राइट पाथ. दैट इज एक्सेप्टिंग रियालिटी. तो अब इसमें एक्सेप्टिंग द रियालिटी दैट यू टुक द रॉन्ग टर्न. बहुत बार तीन केसेस होते हैं इसके अंदर. एक केस है कि मैंने गलती करी है, दूसरा है कि किसी दूसरे ने मुझे गलत राह बताई. किसी से इंडिया में पूछ लेते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं अरे आप ऐसा कीजिए, यहां से राइट लीजिए, वहां से वो चौराहा आएगा, चौराहे पर फिर आप वापस से घूम के यहां पर आइए, फिर मैं आपको वापस बताता हूं कहां जाना. Somebody might misguide. और तीसरा कारण क्या हो सकता है, accepting that sometimes even Google Maps can have some software error. तो ये तीन चीजें क्या है, तीन क्लेश जो है ना, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश है. कि जब हमारे साथ है, और ज्यादातर क्या होता है, हमसे जब गलती होती है तो उसको तो हम एक्सेप्ट करते नहीं, और दूसरे से जो गलती हुई है उसको हम छोड़ते नहीं. Therefore, acceptance of reality is the beginning of rectification. जैसे गलत टर्न हुआ, चाहे किसी ने मुझे गलत मिसगाइड किया, गूगल मैप्स में एरर था, या दोनों भी कारण नहीं था, मैंने गलत टर्न ले लिया. Accept it. Begin the rectification. And rectifying is the beginning of changing the reality. जब आप उस गलती को सुधारना प्रारंभ करते हो तो आप reality को change करना शुरू किए हो. तो जो गाड़ी आपकी गलत road पर गई, सही ड्राइव करने के वजह से अब आप उस रियलिटी को चेंज कर रहे हो जो गलत हुआ है. एक अमेरिकन कॉमेडियन हुए, उनका नाम था वुडी एलन. तो वुडी एलन ने एक दाम्पत्य जीवन के विषय में बताया. तो उनको पूछा गया कि भाई आपका दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है. सो ही सेड, बोथ ऑफ अस, मी एंड माई वाइफ, we eat at different times, we come in and out of our house from different doors, we sleep in different rooms, we are doing everything to keep this marriage together. Which means accepting the reality that we are poles apart. Forgiveness eases us to tolerate our past life karmic reactions. ये क्या है, जब आपको कोई immediate reason नहीं दिख रहा है, कोई व्यक्ति बिना कारण आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा इस जन्म में, आप कभी उसके कुछ संपर्क में भी नहीं आए इस जन्म में, कोई लेना देना नहीं उस व्यक्ति के साथ इस जन्म में, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपके जीवन में कांटा बना हुआ है, तो समझ जाना चाहिए ये पिछले जन्म की कोई करतूत है मेरी, वहां से मैं इसके साथ सौदा करके आया हूं. Some people lead us to Krishna, some people kick us towards Krishna. How to understand this? कि कई हमारा हाथ पकड़कर हमें मदन गोपाल जी के निकट ले आएंगे, देखो उनकी कृपा प्राप्त करो, हाथ पकड़कर खींच कर लाएंगे. और कई बार कई लोग होंगे पीछे से लात मारकर जा उधर. एंड रिजल्ट क्या है वो देखना है. एंड रिजल्ट है मदन गोपाल जी के सामने आप आए. अब ये देखना कि कौन आपको प्रेम से हाथ पकड़ कर लेकर आया या कौन आपको लात घूंसे मार कर लेकर आया, वो कोई मायना नहीं रखता फाइनली, एंड एट द एंड दैट डजंट मैटर. बट द प्रेजेंट टाइम हाउ टू व्यू इट, जैसे हमने कहा बिना किसी कारण के आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, बट दैट पर्सन इज अनवांटेड एंड इरिटेबल, देन अंडरस्टैंड दैट योर पास्ट लाइफ कर्मा हैज. अच्छा, इसमें ये बात समझना जरूरी है, इफ देर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट रिएक्शन देन डोंट ऑलवेज गो टू द पास्ट लाइफ. जैसे किसी ने रात को 12 बजे अगर सबसे तीखी मिसल खाई है और फिर सुबह जो तकलीफ होगी उसे उसके वजह से, सबसे तीखी वो लाल तर्रे वाली खाने के बाद जो सुबह बमबारी होगी, जो सुबह तकलीफ होगी, तो अब उसको ये मत लो कि मे बी माई पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ हुआ होगा ऐसे जिसकी वजह से, नहीं, इट्स पास्ट नाइट कर्मा. सो व्हेन देयर इज इमीडिएट एक्सप्लेनेशन अवेलेबल, यू डोंट हैव टू गो टू द रिमोट कॉज, इमीडिएट एक्सप्लेनेशन इज देयर. अब इसमें अगर हम द्रौपदी का उदाहरण लें तो देखो, जब उस असत सभा में दुशासन ने द्रौपदी को बालों से खींचते हुए लाया और द्रौपदी सबसे पहले अपने पांचों पतियों की ओर देख रही थी आशा भरी नजरों से, और ये पांच पति साधारण नहीं थे. कल्पना करो, कोई भी साधारण सी पत्नी जब उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो सबसे पहले अपने पति की सुरक्षा उसे पुकारती है. यहां पर तो एक नहीं, दो नहीं, पांच पति, और वो भी जो अपने अपने एरिया के सबसे काबिल, भीम को लो, अर्जुन को लो, सबसे बड़े धनुर्धर, सबसे बड़े गदाधर, युधिष्ठिर, इतने बड़े धार्मिक नकुल, सहदेव, पांच पति की ओर देख रही है, परंतु पांचों ने द्रौपदी की कोई सहायता नहीं कर पाए. इन वन सेंस द फाइव हस्बैंड्स ऑफ द्रौपदी लेट द्रौपदी डाउन, बट द्रौपदी नेवर हेल्ड दैट अगेंस्ट. वो पूरे एपिसोड के बाद द्रौपदी ने कभी अपने पांचों पतियों को एक साथ या एक एक कर कभी उनको ताने नहीं मारे. अरे बड़े तुम बने, धनुर्धर बने फिरते हो. उस समय क्या हुआ था, उस समय कहां था तुम्हारा धनुष, भीम, इतने बड़ी गदा लेके घूमते हो, 10,000 हाथियों का बल लेके कहां था, कभी ताने नहीं मारे. इनफैक्ट महाभारत का ये जो एपिसोड है द्रौपदी के ऊपर जो असत सभा ने किया, उसमें दुर्योधन, द्रौपदी वो न्याय मांग रही है, वहां के वरिष्ठों से न्याय मांग रही है, तो दुर्योधन बोलता है एक शर्त पर मैं छोड़ दूंगा, तुम्हारे पतियों को भी छोड़ दूंगा, तुम्हें भी छोड़ दूंगा, पब्लिकली तुम बोल दो कि युधिष्ठिर ने जो किया है इस जुए में वो अधर्म था, बोल दो, पब्लिकली बोल दो. तो दुर्योधन क्या करना चाह रहा था, डिवाइड एंड रूल, ही वॉज ट्राइंग टू प्ले वाइफ एंड हस्बैंड म्यूटिनी, उनके बीच में डिवाइड एंड रूल पैदा करना चाह रहा. सोचो किसी के साथ ऐसा हो रहा है, उस समय क्रोध में बोल सकता था कोई, द्रौपदी अपने होशो हवास में थी, आक्रोश था परंतु होशो हवास में थी. द्रौपदी ने बोला बिल्कुल भी मेरे पति युधिष्ठिर महाराज ने गलती नहीं की है, वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति है और अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करते हुए यहां पर बैठे हैं। जिन वरिष्ठों ने युधिष्ठिर को इस जुए के लिए बुलाया है उनसे पूछो कि वो धर्म क्या है या अधर्म किया है उन्होंने। सो द्रौपदी ऑल्दो बिकेम अ विक्टिम बट शी नॉट ओनली फॉरगेव बट शी प्रोटेक्टेड द इमेज ऑफ द पांडवा। सो समटाइम्स, ये हम किस्सा क्यों सुना रहे हैं, sometimes your own fellow god brother or god sister will let you down, just like Pandavas let Draupadi down. Tumhare hi sabse nikat ke guru bandhu ya guru bhagini wo chhod denge tumhe tumhari us vikat paristhiti mein. Know that Krishna is always ready with the sari. Krishna is always ready with the sari. Therefore I say, when you are down, so down in your life with nothing, know that Krishna is up to something. But फिर भी कई लोग होंगे, अब यहां पर तो हम द्रौपदी और पांडवों की चर्चा कर रहे हैं, अब हमारे लेवल पर हम आए, न तो हम द्रौपदी हैं न जो हमारे साथ कर रहे हैं वो पांडव हैं। देयरफॉर सम पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस वेर एवर दे गो, सम पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस वेन एवर दे गो। So we have to decide which category we are in. Are we in the first category of people, they give happiness wherever they go? Ya unke jaane ke wajah se sabhi khush rehte hain? So finally, forgiveness, what it is? Forgiveness is condemning the offense, not condoning. Condemning the offense while simultaneously not holding a grudge against the offender. Bimari ko kaato, tumor ko kaato, mareez ko khatam mat karo. That is real forgiveness. And finally, forgiveness is realizing that living in this material world is like traveling in a crowded train. हम सब ने अनुभव किया, खास कर बॉम्बे की लोकल ट्रेन। आप अगर टिकट लिए हो बॉम्बे की लोकल ट्रेन में बैठने के लिए तो तैयार रहो, वहां पर कोई आपको रॉयल ट्रीटमेंट नहीं देने वाला है। किसी का पैर आपके पैर के ऊपर होगा, हाँ, आपका नाक किसी के काक के अंदर होगा, आपको खुजली हो रही है, कोई दूसरा वो अपनी खुजली के बदले आपको खुजला रहा है, बदबू आ रही है, पसीना, धक्का मुक्की, ये सब कुछ हो रहा है और उसमें भी झगड़े होते हैं। इतनी भीड़ में बंबई की लोकल ट्रेन में दो लोग, उनके पास इतना स्टेमिना होता है कि वो लोग एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, दिख भी नहीं रहा है, यहां से वहां उनका झगड़ा चल रहा है। तो मान लो कि दो लोग लोकल ट्रेन में, वो लोग एक दूसरे को फर्गिव नहीं कर रहे हैं, झगड़ा चालू कर दिया। तुझे मैं बताता हूं, तेरी तूने पैर रखा तो कैसे रखा मेरे ऊपर, हाँ तुझे दिखता नहीं है, हाँ मैं यहां पर खड़ा हूं दिखाई नहीं देता है, तो अंधा है क्या, बटन लगा रखी तेरी आंखों में ऐसे, फिर वो तू कौन सा 30 मार खाए, तू कौन सा यहाँ पे फर्स्ट क्लास की टिकट लेके तो खड़ा हुआ है, बाकी भी तो हैं, बाकी भी तो सहन कर रहे हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा करते करते उनका दोनों का स्टेशन चला गया। तो डिवोटी कम्युनिटी में क्या हुआ है, स्टेशन मत जाने दो। एक होगा वो तुम्हारे ऊपर पैर रखेगा ना, केवल पैर रखेगा, लात मारेगा, घूंसे भी मारेगा, ये वो ठीक है, स्टेशन आ रहा है ना मेरा, मार ले भाई, हो सकता है मेरे भी लात लगे होंगे तुझे, साथ में रहते हुए तूने मुझे खरी खोटी सुनाई, मैंने भी तुझे खोटी खरी सुनाई, होगा मेरे साथ। तो इसलिए ट्रेन से उतरो मत और अपने स्टेशन पर उतरो, जब उतरना है तो अपने स्टेशन पे उतरो। टू फॉरगिव इज टू सेट अ प्रिजनर फ्री। जब आप क्षमाशीलता पालन करते हो आपके जीवन में, आपने किसी को क्षमा किया तो आपने क्या किया है, एक किसी कैदी को रिहा किया है आपने, और वो कैदी कौन है, हम खुद हैं। एंड इन ड्यू कोर्स यू विल रियलाइज दैट द प्रिजनर वॉज यू। यू फ्रीड योर ओन सेल्फ बाय फॉरगिविंग द अदर पर्सन, विथहोल्डिंग दैट नेगेटिविटी टुवर्ड्स द अदर पर्सन इज लाइक बिकमिंग योर ओन प्रिजनर। Forgive others not because they deserve your forgiveness, but forgive others because you deserve peace of mind. ये जो आजकल स्मार्टफोन्स में होते हैं ना स्माइलीज, अलग अलग स्माइलीज होते हैं, आपने इसको ऑब्जर्व किया है, ये जो उंगलियों का खेल क्या है स्माइलीज के अंदर, ये वाली उंगली दिखा दो तो किसी को बेइज्जत कर रहे हो, ये वाली उंगली दिखाओ तो किसी की तारीफ कर रहे हो, ये दोनों उंगली को मिला दो तो कह रहे हो क्या लाजवाब व्यक्ति है तू। ये उंगली का खेल चल रहा है। इसलिए कोई भी चीज को आप उसको एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर रखकर उसके ऊपर अपने कंक्लूजन्स मत दो, जैसे कि वही उंगली जब ऐसे हो जाती है, ये हो जाती है, ये हो जाती है, उसका मतलब बदल जाता है। इसलिए हम अंत में क्या कहेंगे, वही उंगली जब किसी की ओर करते हो, ये वाली उंगली, तो किसी का दोष निकाल रहे हो, किसी को बेइज्जत कर रहे हो, और कल यही उंगली जो डूबता हुआ भारत है वो खिलता हुआ कमल बन सकता है। तो संभल कर कल सुबह ये वाली उंगली आपकी इस्तेमाल करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, एनी कॉमेंट क्वेश्चन?